मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, परमात्मा।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पिछले दो दिन से हम और आप सभी परमात्मा शक्ति द्वारा स्वर्णिम युग की चर्चा करते हुए आज अंतिम सत्र में पहुंचे हुए हैं। तो इस सत्र का विषय है जीवन का सच्चा सौंदर्य परमानंद। तो इस विषय पर प्रवचन करने हेतु आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सोम प्रभा दीदी जी हमारे मध्य में उपस्थित है। तो मैं सौभाग्य समझती हूँ कि मैं ऐसे महान विभूति के परिचय देने का अवसर मुझे मिला है। दीदी जी आप 1968 में इस ईश्वरीय ज्ञान की उनके जन्म स्थान मैसूर कर्नाटक में प्राप्त किया। जब आप कॉलेज की छात्रा थी 1969 में समर्पित होकर इस ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से संलग्न किया। आप भारत के कई प्रांतों में सेवा करते हुए मॉरिशियस, दुबई और रेन्यू आदि विदेशों में भी ईश्वरीय सेवा की है। आप वर्तमान समय सोलापुर सब जोन के डायरेक्टर के रूप से संचालन कर रहे हैं। आप इस रिलीजियस विंग के कार्यकारी सदस्य एवं महाराष्ट्र जोन के कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यवाही संभाल रहे हैं। आप अपने इस ईश्वरीय सेवा के 50 वर्ष के कार्यकाल में कई मेगा प्रोग्राम जैसे रिलीजियस विंग, मेडिकल विंग, ग्राम विकास विंग, यूथ विंग आदि कई विंग के रैलीज का संभालन किया है। सम्मेलन का भी आयोजन करके सुललित रूप से संभाल किया है। इनकी मातृभाषा कन्नड़ होते हुए भी आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और मराठी भाषा में प्रभुत्व है। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय सोम प्रभा दीदी जी, आपका विषय है जीवन का सच्चा सौंदर्य परमानंद के बारे में अपना अनुभव व्यक्त करेंगे आदरणीय सोम प्रभा दीदी जी।
ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए, क्योंकि अभी परसों 3 दिन से लेकर के आज तक हम ओम शांति के महामंत्र सभी सेशन में और आपस में मिलते समय पर भी एक दूसरे को कहते हैं अथवा कहते हुए सुनते आ रहे हैं। तो अभी वो हम सबको मनोगत हो गया होगा, हाँ, वो उच्चारण हम सब मिलकर के करेंगे, 3 बार करेंगे, क्योंकि हमारी आदरणीय दादी जी जानकी जी का ये सदैव विशेष महामंत्र 3 बार उच्चारण करने का रहता है। तो हम भी उनके याद के साथ साथ उच्चारण करेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूपी सत्य शिक्षक परम सद्गुरु सत्य पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप तथा हमारे साकार माध्यम पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा इन दोनों की प्रेरणा से जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्य 1936 से लेकर के 83 साल से लेकर के चलते आ रहे हैं इसका श्रेय हमारे निराकार पिता परमात्मा और साकार पिता पिताश्री जी को जरूर जाता है। तो मैं उनको प्रप्रथम आप सब के तरफ से स्वयं मेरे तरफ से नमन करती हूँ नमन करती हूँ नमन करती हूँ। साथ साथ आप सभी जो भी संत महानुभाव एवं आध्यात्म अभिलाषी आप सब सज्जन महानुभाव एवं देवी परिवार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आपको भी मेरे कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। अभी तक हम सुन रहे थे वैसे तो हम सबको पता है हमारा इस साल का इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का अम्ब्रेला थीम है परमात्म शक्ति द्वारा स्वर्णिम युग की स्थापना। तो हम परमात्म शक्ति के बारे में भी और साथ साथ भविष्य में स्थापित होने वाली अथवा हो रही सत्युगी दुनिया के बारे में भी हम 3 दिन से सुनते हुए समझते हुए और आपस में भी थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए स्वयं भी कई बातों का अनुभव करते हुए हम आज इस 3रे दिन में इस अंतिम प्रवचन के सेशन में पहुंचे हुए हैं। अभी का विषय आपको बहन ने बताया ही है कि जीवन का सच्चा सौंदर्य परमानंद। तो ये विषय सुनते ही हम सबके मन में जरूर ये बात आती है, जीवन तो क्या है? जीवन तो हम जी रहे हैं, निभा रहे हैं, परंतु वास्तव में यदि हम जीवन का सच्चा अर्थ समझेंगे, अलौकिक अर्थ समझेंगे, तो उस अनुसार हम अपने जीवन को परिवर्तन करके अपने जीवन में सच्चे सौंदर्य जरूर ला सकते हैं। तो देखिए, जीवन, जीव प्लस न, जीव यानी ये शरीर जो प्रकृति से पांच तत्वों से बनाया हुआ ये शरीर है। जीव प्लस अन्न, अन्न माना सूक्ष्म अणु, जो सूक्ष्म अणु है वो है वास्तव में मैं। मैं एक चेतना हूं, चैतन्य शक्ति हूं, जिसको आत्मा कहते हैं आध्यात्मिक शब्द में। तो वैसे जीव प्लस आत्मा इज इक्वल टू जीवात्मा, यानी मैं इस शरीर और शरीर के साथ आत्मा इस सृष्टि मंच पर मेरे पार्ट बजा रहा हूं। यह है एक अर्थ में जीवन। यदि हम अपने जीवन में सुख शांति आनंद पवित्रता प्राप्त करने चाहते हैं या जीवन को सुखमय शांतिमय आनंदमय पवित्रमय आदि बनाने चाहते हैं, तो इसका और भी गुही राज है, गुप्त रहस्य है, उसको भी हम थोड़ा विश्लेषण करके जानेंगे तो फिर हम सच्चे अर्थ से जीवन क्या है वो समझकर उस अनुसार हम अपने जीवन सुंदर खुशबूदार आनंदमय परमानंदमय बना सकते हैं। जैसे मैंने जीव प्लस अन्न का अर्थ बताया था, उसी अनुसार यदि एक एक अक्षर को भी हम अलग करें, उसके पीछे भी राज है। जी प्लस व प्लस न इज इक्वल टू जीवन। तो इसका भी हम थोड़ा ध्यान से समझे कि जी का अर्थ है वास्तव में जीवो और जीने दो। खुद भी मनुष्य वर्तमान समय पर कैसे जीना है वो भी नहीं जानता और ना दूसरों को जीने भी नहीं देता। तो ऐसे परिस्थिति में हमें ये जानकर अपने जीवन में इस बात को अप्लाई करके चलना अति आवश्यक है कि जीवो और जीने दो। इसलिए ये कहा गया है कि परोपकाराया पुण्याया पापाया परपीडनम। जितना हम दूसरों के लिए उपकार करते हैं, परोपकारी बनते हैं, तो उतना हम उनके आशीर्वाद दुआएं जमा करते हैं, पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यदि हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते रहेंगे तो उतना ही हमारे आत्मा में पाप भरते जाते हैं, उसका फल भी हमको ही भोगना पड़ता है। ये तो हमको पता ही है, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा, जो बोएंगे वही हम पाएंगे। जिस प्रकार का बीज डाला है उस प्रकार का ही पेड़ पौधे फल सब निकलते हैं। तो इसीलिए हम सदैव ये लक्ष्य रखें कि हम भी अच्छी तरह से अपने जीवन को बनाते चले और दूसरों के जीवन को भी अच्छे बनाने के लिए प्रेरणा देते चले। वा का अर्थ है वाह, मेरा जीवन वाह। खुद भी हम अपने आप को वाह वाह करने जैसा, करके लेने जैसा कार्य करें और दूसरे भी जो हमारे कार्य देखे उनको भी लगे कि इनका कार्य कितना प्रेरणादायी है, कैसे इतना सुंदर इनका व्यवहार है, तो वैसे दूसरे भी हमें वाह वाह का शाबाश दे, ऐसे हमारा जीवन हो। तो ये तब बन सकता है, ना का अर्थ है नकारात्मक विचारों को बदलकर हम सकारात्मक विचार को ही चलाने का प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। तो जैसे हम तो पिछले सेशन में भी सुन रहे थे, श्रीमन साहू जी भी बता रहे थे कि वर्तमान समय पर दुनिया में स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण है नेगेटिव थॉट्स। उन्होंने यहां तक भी कहा कि नेगेटिव थॉट्स तो छोड़ो, न्यूट्रल थॉट्स भी नहीं हो, हमारा सदैव पॉजिटिव थॉट्स रहे, जो हमारे अंदर भी एम्पावरमेंट भरे और दूसरों के अंदर भी शक्ति भरकर उनको भी सशक्त बनावे। तो इस प्रकार से हमारा जीवन नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जब परिवर्तन होगा तभी हमारा जीवन सुखमय शांतिमय आनंदमय बन सकता है। क्योंकि हम देखते हैं अंग्रेजी में भी कहा गया है, जीवन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लाइफ, लाइफ कहते हैं ना, LIFE, लाइफ। इसके पीछे भी राज है, रहस्य छिपा हुआ है हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। तो देखिए, यल का अर्थ होता है लवफुल, आई का अर्थ होता है इंट्रावर्टनेस, यफ का अर्थ होता है फेथफुल, ई का अर्थ होता है ईगोलेस। जब हम इन बातों को थोड़ा गहराई से सोच समझकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हमारा जीवन यानी हमारी लाइफ जरूर परिवर्तित होने में कोई कमी नहीं रहेगी। तो वैसे इससे सिद्ध होता है कि हम सबके साथ प्यार से व्यवहार करें, हमारा जीवन लवफुल हो, चाहे खुद के प्रति क्यों नहीं हो, हम जैसे भी हैं वैसे हम ठीक है, अच्छे हैं। अपने आप को भी प्यार करना जरूरी है, अपने आप के ऊपर भी कभी वहम नहीं होना चाहिए, अपने आप के प्रति भी कोई न कोई बात आ गई तो तिरस्कार की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो आज नहीं तो कल मैं जरूर परिवर्तित होऊंगा होंगी, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो स्वयं भी अपने आप को प्यार करें और दूसरे हमारे परिवार वालों को भी हम प्यार करें और हमारे संबंध संपर्क में आने वाले जो फ्रेंड सर्कल है अथवा हमारे जो भी कार्य स्थान है तो वहां के कोई भी कोलिग्स है तो सबके साथ हम जितना प्यार से मीठे रूप से व्यवहार करेंगे उतना ही हम उनके समीप होते जाएंगे और उनके प्यारे बनते जाएंगे। तो फिर जब दूसरे हमारे से खुश रहेंगे तो उतना हम भी आनंदित रहेंगे, उनकी दुआएं हमारे तक पहुंच जाती है तो उससे भी हम आनंदित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया इंट्रावर्टनेस यानी हम जितना हो सके अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करें, अर्थात जो भी कर्म करेंगे कर्म करने से पहले खुद सोच समझ करके कर्म करें, क्योंकि कर्म करने के बाद यदि हम सोचेंगे वो सोच नहीं होगी, वो पश्चाताप हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी इंट्रावर्टनेस स्थिति भी बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ये भी अंग्रेजी में कहा गया है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। तो इसीलिए हर एक बात में इम्पोर्टेंट बात है हमारी सोच, हमारे संकल्प, पूरा हमारे जीवन में हमारे संकल्पों के ऊपर भी ध्यान चाहिए। तो उसी प्रकार तीसरा कौन सी बात है, LIF, फेथफुल, फेथफुलनेस। तो फेथफुल यानी विश्वास, विश्वास खुद के ऊपर भी विश्वास और अपने साथी सहयोगियों के ऊपर भी विश्वास और विशेष रूप से जो जगत नियंता ईश्वर परमपिता परमात्मा के ऊपर तो हमें पूरा विश्वास चाहिए, क्योंकि गीता में ये भी बात कही गई है, निश्चयते विजयन्ति संशयते विनश्यन्ति। तो सदैव हमको ये ध्यान पर रखना है कि हम फेथफुल बनकर के रहे, विश्वासी बनकर के रहे, तभी रह सकेंगे जब हमारा कार्य व्यवहार उस प्रकार का होगा। जब हम सत्य मार्ग पर ईश्वर के दिए हुए मर्यादा के ऊपर हम ध्यान रख करके चलेंगे, तभी हम अपने कार्य उस प्रकार से कर सकेंगे और सबके लिए हम विश्वास पात्र बन सकेंगे। और ई का अर्थ ईगोनेस, ईगोलेस। वर्तमान समय पर हम देखते हैं हर एक छोटी मोटी बात में भी, चाहे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी स्थान, कोई भी प्रकार के व्यक्ति को देखते हैं, छोटी मोटी बातों में अभिमान आ जाता है। ये अभिमान हमें बहुत नीचे गिरा देता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो अहंकार है वो सबसे ऊंचा है, ऊपर की मंजिल पर है। तो उधर से गिरे तो क्या होगा, चकनाचूर। तो सदैव ये हम ध्यान पर रखें कि कभी भी हम अभिमान में नहीं आवे। भले कोई कितने भी मेरी प्रशंसा करे, तभी भी हमें कोई अभिमान नहीं आवे, या हम खुद भी कोई अच्छे कार्य करके खुश होकर के स्वयं भी अपने ईगो में मत आवे। तो इससे क्या होगा, कभी कोई निंदा करेगा तो फिर हम उदास भी हो जाएंगे। तो हमें दोनों बातों का बैलेंस भी जरूर रखना है। तो गीता में तो यही मुख्य रूप से उपदेश किया हुआ है, मान अपमान स्तुति निंदा जय पराजय सुख दुख सब में कैसे रहो, समान रहो। तो इसीलिए प्रशंसा में भी हम कोई भी प्रकार के अभिमान में ना आए, तो हम नम्रता भाव से, निराभिमानता से झुक करके जितना हम अपने सारे दिन के कार्य व्यवहार करते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं, उतना हम सुंदर खुशबूदार पवित्र खिले हुए फूल बन जाते हैं। उतना ही हमारे सौंदर्य बढ़ता जाता है। तो इसलिए सदैव ये हमें समझना है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, शांतिमय सुखमय बनाना है, तो थोड़ा बहुत हमको संघर्ष को देखना ही पड़ेगा जीवन में। इसलिए कोई अनुभवी महान भाव ने कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के महान नहीं होता, बिना संघर्ष के महान नहीं होता। जब तक नहीं पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक नहीं पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं बन पाता, पत्थर भी भगवान नहीं बन पाता। तो ये सिद्ध करता है कि जीवन में भले हमें कई बातों का संघर्ष करना पड़ता है, जो भी मैंने अभी तक कई बातें सुनाई, इन सब बातों को अपनाने के लिए संघर्ष तो जरूरी है। वही हमारी परीक्षा है, वही हमारी ऊंची चढ़ने की सीढ़ी है। तो जितना हम इस बात में आगे बढ़ते जाएंगे, उतने हम अपने लक्ष्य के मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो अभी हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे जीवन क्या है, किसको जीवन कहा जाता है, हम अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करें, इन बातों को हम थोड़ा बहुत प्रमाण से जाने, अभी जान चुके हैं। परंतु अभी हमें आगे ये भी जानना जरूरी है, दूसरी बात, हम सच्चे सौंदर्य को अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें। सुंदरता दो प्रकार की है, हम और आप सभी जानते हैं। सभी को अच्छा लगता है ना सुंदर बनना, या नहीं लगता है? सभी चाहते हैं सुंदर बनने के लिए, चाहते या नहीं चाहते हैं? चाहते तो है, कैसे कैसे? बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, या आध्यात्मिक रूप से, आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से? एक है शारीरिक सुंदरता, दूसरा है आत्मिक सुंदरता, रूह की सुंदरता। तो वर्तमान समय पर मनुष्य क्या सोचता है, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी चाहिए, है ना, देखने के लिए मैं बस कैसे सुंदर लगना चाहिए, स्मार्ट एंड स्लिम रहना चाहिए, क्या 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 बातें सोच करके मनुष्य सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक उन्हीं बातों में व्यस्त रहता है, रहते हैं ना आजकल। सुबह उठने से ही शुरू हो जाता है आईने के सामने चेहरा देखने का, बस मेकअप शुरू हो जाता है। तो आजकल तो मेकअप तो छोड़ो, ब्यूटी पार्लर का जमाना हो गया है, है ना? ज्यादा करके बहने क्या कोशिश करते हैं, हम सुंदर दिखे, इसीलिए ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने चेहरे का श्रृंगार, बालों का श्रृंगार, कई बातों का श्रृंगार करने चाहते हैं। केवल बहनों के लिए नहीं, आजकल मुझे लगता है भाइयों के लिए भी है, है ना? भाइयों के लिए भी होगा ब्यूटी पार्लर, शायद आप लोग जो बैठे हैं आप तो गए नहीं होंगे, परंतु जानते होंगे, क्योंकि हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, हम तो अपने आत्मा की सुंदरता को बनाने में लगे हुए हैं, हम उस स्थूल ब्यूटी पार्लर के दुकान में क्यों जाएंगे, उस शॉपिंग शॉप में क्यों जाएंगे, जाने की कोई हमको जरूरत तो है ही नहीं। परंतु फिर भी वर्तमान समय पर ये दुकानें बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसी अनुसार परमात्मा कहते हैं, बच्चे आप अपने आत्मा का भी श्रृंगार करने का आदत लगाओ, आत्मा की भी ब्यूटी पार्लर दुकानें मैं खोल रहा हूं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जहां तहां भी ब्रांचेस है, आप लोग जहां जहां से भी आए हैं, तो मैं समझती हूं आप सब के पास ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा उपशाखा जरूर है। भले नजदीक नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा अथवा आसपास के गांवों में होगा, तो आप जरूर उस ब्यूटी पार्लर में जाइए। जैसे इधर जाने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम परमात्मा के बच्चे इतना हम 3 दिन से ज्ञान सुनते आ रहे हैं, हम अपनी आत्मा को क्यों ना सुंदर बनाए। तो उसके लिए ये ईश्वरी विश्वविद्यालय में आपको सहज राजयोग और सत्य ज्ञान के द्वारा विधि बताई जाती है, किस प्रकार से हम अपने आप को सुंदर बनाया जाए, यानी अपनी आत्मा को कैसे सुंदर बनाया जाए। क्योंकि भले आप चेहरे से कितने भी सुंदर मेकअप करो, आजकल तो मेकअप क्या प्लास्टिक सर्जरी भी करके लेते हैं, है ना, सुना होगा आप सभी, तो उसके लिए किस लिए करते हैं, उससे भी हमारी सुंदरता बढ़े, परंतु वास्तव में ये सुंदरता तो और भी ज्यादा अपने शरीर को बिगाड़ती जाती है। तो मनुष्य भले कितने भी शरीर को श्रृंगारेगा, तो आज नहीं तो कल ये शरीर बूढ़ा होने ही वाला है, ये शरीर तो क्या होने वाला है, निष्कामी होने वाला ही है, निशक्त होने वाला ही है। तो ये शरीर के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं, ये हड्डी मांस का पुतला है, नस नाड़िया और खून मलिन इत्यादि भरे पड़े हैं, तो केवल चमड़ी ढका हुआ है। इसलिए हम अपने आप को सुंदर बनाने चाहते हैं, परंतु यदि थोड़ा चमड़ी खुल जावे तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए सदैव हमें ये समझ करके चलना है कि हम इस शरीर को नहीं, मैं स्वयं कौन एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक आत्मा हूं, रूह हूं। तो मुझ आत्मा में जो काला परछाया पड़ गया है, यानी आत्मा में पाप शेष भर गया है, जो कमी कमजोरी रह गई है, पुराने स्वभाव संस्कार से हम आत्मा मलिन हो गए हैं, अवगुण इत्यादि भरे पड़े हैं, तो इनको हम स्वच्छ करके जो परमात्मा हमें 7 मेकअप के साधन दिए हैं, कौन से, सभी सुनते आ रहे हैं, आप सबको अभी तक पाठ पक्का हो गया होगा, वो 7 गुण कौन से हैं, 7 प्रकार के मेकअप कौन से दिए हैं परमात्मा ईश्वर हमारे पिता शिव कल्याणकारी शिव बाबा, कौन से दिए हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और शक्ति और प्रेम, ये जो भी सात गुण हैं, ये हमारे आत्मा के लिए जीवन का मेकअप है। तो हम जब इन सप्त रंगों में, सप्त गुणों में जब हम अपने आप को सजाने शुरू करेंगे, तो सचमुच मैं आत्मा सुंदर जरूर बनती जाऊंगी। जितनी आत्मा सुंदर बनती जाएगी इन गुणों से, वैसे तो इन गुणों को भरने के लिए भी हमें परमात्मा का चिंतन करना अति आवश्यक है, राजयोग का अभ्यास करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के सर्वज्ञ जो परमपिता परमात्मा है, उनके साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इन गुणों को भी कैसे भर सकेंगे। तो इसीलिए परमात्मा के साथ भी संबंध जोड़ने का, यानी परमात्मा के चिंतन करने का, जिसको राजयोग कहा जाता है, इसका अभ्यास करने का भी हम यहां से दृढ़ संकल्प करके जाना चाहिए। तो जैसे ये सप्त गुण हैं, इनको हम भरते जाएंगे, जैसे हमारे ये गुण हमारे में आते जाते हैं, वैसे दिव्य गुण भी हमारे अंदर प्रादुर्भाव होने लगते हैं। दैवी गुण, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भविष्य में सत्युगी दुनिया, जो स्वर्णिम दुनिया, जो स्वर्ग पैराडाइज स्थापित होने वाला है, तो उसमें हम देवी देवता बनकर संपूर्ण सुख शांति संपत्तिमय जीवन व्यतीत करें। जैसे हम सुन रहे थे, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों मौजूद हो, तभी हम कह सकते हैं वो एक स्वस्थ जीवन है, तो आनंदमय जीवन है। तो क्योंकि ये भी कहावत है, हम और आप सब जानते हैं, when wealth is lost then nothing is lost, when health is lost then something is lost, when character is lost then everything is lost। कहने के लिए कह देते हैं, परंतु वास्तव में वर्तमान समय पर ये उल्टा है, रिवर्स है ना। मनुष्य क्या समझ करके बैठा है, when character is lost then nothing is lost, when health is lost then something is lost, when wealth is lost then everything is lost। क्योंकि पैसे ही भगवान समझ करके बैठे हैं, धन कमाने के लिए, एक पीढ़ी के लिए नहीं, सात पीढ़ी जितना कमाने के बावजूद भी एक व्यक्ति को उसके नौकर ने पूछा, एक व्यापारी जो सात पीढ़ी तक कमा करके रखा था, सेठ जी आप इतने चिंतित क्यों हैं, इतने कमाने के बावजूद भी? तो सेठ जी ने क्या उत्तर दिया होगा, बता सकते हैं? हाँ बताइए। हाँ, सात पीढ़ी तक तो मैंने कमा लिया, परंतु मेरे आठवीं पीढ़ी का क्या होगा? सोचिए, मनुष्य कितने लालची बन गया है, लोभी बन गया है, तो कोई भी विकार उसको छोड़े नहीं है, सब में वो आगे बढ़ गया है, भरपूर हो गया है, परंतु उन विकारों को अभी हम त्यज कर निर्विकारी बनने का, गुणों को अपने अंदर धारण करने का अभ्यास करें। तो जैसे इन सप्त गुणों को हम धारण करते जाएंगे, वैसे वैसे दैवी गुण भी हमारे अंदर आते जाएंगे। जैसे कहा गया है, जैसे सुन रहे थे हम श्रीमंत साहू जी के उनके स्पीच में कि 36 दिव्य गुण हैं, परंतु मैं कहती हूँ 36 तो केवल मुख्य मुख्य उन्होंने निकाला होगा, परंतु जो भी अच्छे गुण हैं इस दुनिया में जीवन में धारण करने की, वो सभी देवी गुण में ही गिना जाएगा। जो देवी देवताओं को हम देखते हैं उनके अंदर जो भी गुण है, जब उनके सामने बैठते हैं तो कितनी बातें हमारे अंदर आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे देवताओं के चित्र को तो सभी गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। उसमें मुख्य गुण है कौन सी है, हमारे सुंदरता को बढ़ाने वाला गुण है हर्षित मुखता। हर्षित मुखता, जितना हम चेहरे में प्रसन्नता लाएंगे उतना ही हमारा जीवन सुंदरमय बनता जाएगा। तो इसलिए हमारे आदरणीय दादी जी सदैव कहती रहती थी, प्रकाशमणि दादी जी और जानकी दादी जी भी कहते हैं, भले आप कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं दो, सिर्फ आप हंसते रहो। जब आपका चेहरा हर्षित मुख रहेगा तो बस यही सबके लिए एक देन है, वरदान है। तो ये हम अपने जीवन में यदि धारण कर ले तो मैं समझती हूं हमारा जीवन जरूर सुंदर बन जाएगा। क्योंकि आत्मा जितना जितना इन गुणों से भरपूर होगी उतना आत्मा मस्तक पर चमकने लगेगी, धमकने लगेगी, तो जिससे हमारे चेहरे के ऊपर इस प्रभा मंडल में एक अनोखी सुंदरता प्रसन्नता दिखाई देगी। इसीलिए एक महान अनुभवी व्यक्ति ने कहा है, मानव समझता है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होता है, ये उसका भ्रम है। मानव समझता है सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होता है, ये उसका भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो तो अपने आप सब दुख दूर हो जाते हैं, ये हकीकत है। सब दुख दूर हो जाने के लिए अपने आप को, अपने मन को प्रसन्न रखना होगा। ये कला हमें इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा राजयोग के माध्यम से सीखने को मिलती है। तो योग ही एक आर्ट है, योगा इज एन आर्ट। तो इस आर्ट को यदि हम सीख लेते हैं, इस टर्निंग पॉइंट को यदि हम सीख लेते हैं, सचमुच हम अपने जीवन को सुंदर जरूर बना लेते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को सुंदर बना लेगा, वो अपने जीवन में सदा काल के लिए नहीं हो, कम से कम बीच बीच में तो क्यों नहीं, परमानंद का जरूर अनुभव करता रहेगा, कर सकेगा। तो ये हम यहां पर जब भी परमात्मा के चिंतन में बैठते हैं, जब हम अपनी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं, तो उस समय पर इस प्रकार का हम अनुभव करते हैं, तो मैं समझती हूं कि वास्तव में हम परमपिता परमात्मा जो परम शक्तिवान है, परम गुणों के भंडार है, परम ज्ञानी है, ज्ञानेश्वर है, तो ऐसे ईश्वर के साथ हम जितना अपना संबंध जोड़ते हैं, उतना हम सचमुच परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यही बात गीता में कही गई है, एक ही शब्द में कहा गया है कि मन मना भाव। बस आपके मन को मेरे मन में स्थित करो। तो जब हम अपने मन को शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, सत्यवान बनाकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, तभी हम सचमुच अपने जीवन में परम आनंद का अनुभव करते हैं, कर सकते हैं। और शायद मैं समझती हूँ आप लोगों में से जो भी सुबह अमृत वेले का योग करने के लिए यहाँ आ रहे होंगे, अथवा योग का समय प्रति समय जो कार्य चलता है, कार्यक्रम, उसको अटेंड कर रहे होंगे, तो उस समय पर कभी आप इस प्रकार का थोड़ा बहुत प्रमाण में अनुभव तो जरूर किए होंगे। कोई ने किया है, किए हैं? भले परमानंद का नहीं है तो आनंद का तो अनुभव किए हैं, थोड़ा बहुत प्रमाण में तो किया होगा ना। तो यही आनंद हमारे जीवन में बनी रहे, तो तभी हमारा जीवन सुंदरमय जीवन बन जाएगा, यही हमारा सच्चा सौंदर्य होगा। तो इसलिए ये गीत की लाइन मुझे याद आ रही है, उसकी रचना इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ईश्वर जो ये रचना रचा हुआ है, तो ये रचना ही इतनी सुंदर है। जब हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं, उस नजरियों से देखते हैं, तो इतना सुंदर दिखाई देता है, तो फिर वो ईश्वर परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा। इसलिए मैंने पहले ही शुरू में ही कहा कि वो है सत्यम, शिवम, सुंदरम। ऐसे हमारे पिता परमात्मा को हम बहुत 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 धन्यवाद देते हुए, ऐसे ईश्वर हमें यहां तक कैसे भी करके इस कार्यक्रम के लिए लाए, ऐसे सुंदर वातावरण में, सुंदर परिसर में, सुंदर संघ में, क्योंकि संघ का रंग भी लगता है, एक पल खराब हो गया तो दूसरे सभी खराब हो जाते हैं, उसको निकालना पड़ता है। जब अच्छे पल के साथ अच्छे पल अच्छे रहते हैं, ऐसे संग भी अच्छा चाहिए, ऐसे हमें इतना सुंदर संग भी प्रदान करके दिए हैं और इतना सत्संग में सबके अनुभवी तो बोल भी सुनने को प्रेरणादायक बोल सुनने को मिला है, तो ऐसे हम कितने भाग्यवान हैं। समझते हैं अपने आप को भाग्यवान हैं सचमुच। हम केवल भाग्यवान नहीं हैं, सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। केवल सौभाग्यशाली आत्माएं भी नहीं हैं, हम वास्तव में देखा जाए पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। कारण देखो दुनिया में कितने करोड़ आत्माएं हैं, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, भारत में कितने करोड़ तक हैं, परंतु उनमें से हम कितने चुने गिने इधर आए हैं यहां पर इस कार्यक्रम के लिए। और इस कार्यक्रम में भी अभी इस लास्ट सेशन में सारे दिन सुन सुन करके थक करके कितने तो लोग अपने शैया में जाकर के विश्राम कर रहे होंगे, तो उनमें से भी आप लोग जो यहां पर पहुंचे हुए हैं तो आप तो और भी ज्यादा पद्मा पद्म भाग्यशाली धन्य धन्य आत्माएं हैं। तो ऐसे आप सब महान विभूतियों को सज्जनों को जो अभी तक आप इस विषय पर जो जीवन का सच्चा सौंदर्य परमानंद विषय पर सुने हैं समझे हैं, तो मैं समझती हूं इसको केवल समझने तक ही नहीं, आप स्वयं अनुभव करते हुए यहां से वापस अपने स्थान पर जहां जहां पर भी जाएंगे वहां भी आपके चेहरे के द्वारा ये अनुभव कराए, ये मेरी इच्छा है। कोई भी आपको वहां वापस जाने के बाद आपको देख करके ये पूछे कि आप कौन से ब्यूटी पार्लर से आए हो, क्या पूछे कौन से ब्यूटी पार्लर से आए हो, तो उनको भी ये परमात्मा का स्थान का परिचय देने के लिए हमें आसान हो जाए तो मैं समझती हूं। तो ऐसे हम अपने आप को केवल अपने चेहरे के द्वारा ही नहीं, अपने सारे कर्मों के द्वारा व्यवहार के द्वारा भी परिवर्तन करने का लक्ष्य रख करके जाएंगे, ऐसे मैं आशा ही नहीं संपूर्ण विश्वास रखती हूं। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुने हैं, शांतिपूर्वक सुने समझे, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद देते हुए मेरे इन विचारों को समाप्त करती हूँ। और साथ साथ हम अभी योग में बैठेंगे तो उस परमानंद का अनुभव करते हुए उसी स्थिति से हम यहां से जाएंगे अपने अपने कमरे में और उसी स्थिति का अनुभव करते हुए परमात्मा को थैंक्स देते हुए परमात्मा की विशाल गोद में हम विश्राम करेंगे।